मार देना है या फोर्स इस्तेमाल करके इसको रोकना। जो 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 सोचने वाले लोगों का जहन होता है नॉन फौजी, वो कहते हैं अच्छा जी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लीजिए, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुन लूंगा और फिर हम किसी एक नतीजे पर पहुंच जाएंगे, या मैं आपसे एग्री कर जाऊंगा या आप मुझसे एग्री कर जाएंगे, या हम नहीं एग्री करेंगे एंड विल लर्न टू डिसएग्री विद ईच अदर एंड मूव ऑन। लेकिन जब आप मिलिट्री और मुलाइज्म को जब आप ज्वाइन करते हैं, जो कि हमने किया है पाकिस्तान में डेलिबरेटली अपने इक्तदार कायम रखने के लिए, तो फिर आपको एक अथॉरिटी का ऐसा सिंड्रोम आता है कि कोई शख्स उस डंडा का जोर सबसे बड़ा जोर है, जो हमने कह दिया ये ठीक है, इस पे कोई बात नहीं हो सकती, और जो इस पे कुछ बोलेगा हम उसको जान से मार देंगे। तो जान से मारना, जो लोग जान से मारने पे तैयार हों वो गाली गलौज देना तो कोई बड़ी छोटी सी बात है।
बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने एक्सप्लेन की, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप देखिएगा कि मजहब का इस्तेमाल टू मैनिपुलेट तो दैट इज रॉन्ग, जो कि जियाउल हक साहब का अगर याद कर रहे हैं, वो हर बात रिलीजन से शुरू करते थे, रिलीजन पे खत्म कर देते थे। आप उसके बाद अभी भी आप अगर आप देख लें तो रिलीजन से, हालांकि रिलीजन डजंट टीच रॉन्ग, मेरा ख्याल है एवरी रिलीजन जो है वो एहतराम करना सिखाता है, और इस्लाम में तो आप अपनी रोटी नहीं खा सकते जब तक के साथ वाले बंदे के पास हमसाये को रोटी ना दी जाए, मगर ये जो इकट्ठा करना इसको तो अलाउ ही नहीं करता। आशर अजीम आपका बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। आई होप इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को मुझसे कोई गलती नहीं होगी तो नेक्स्ट मंडे को विल लुक फॉरवर्ड टॉकिंग टू यू अगेन। आई जस्ट नीड योर एनालिसिस एंड वन एडवाइस ऑलवेज। थैंक यू सर,
थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो।
थैंक यू वेरी मच। आशर अजीम साहब से मैंने आपकी बातचीत कराई, ये कोशिश होगी, और आज देखिए मेरी अपनी सोच में चेंज आया थोड़ा सा। I just want to meet with the, this is the company which makes a huge difference. I wish we should have good company. I love you all. 11वां मिसिसागा हलाल फूड फेस्टिवल 15 और 16 तारीख को, बाय द वे 16 तारीख को ईद है, विच इज इतवार का दिन, और नमाज ईद सेलिब्रेशन स्क्वायर पे, नमाज ईद 10:30 बजे ईद की नमाज होगी सेलिब्रेशन की स्क्वायर पे, एंड आई होप लाखों हजारों लोग वहां पे मौजूद हों, इतना बड़ा ग्राउंड है,
एंड
आएंगे सेलिब्रेशन स्क्वायर पे, वी विल ऑल ऑफर आर प्रेयर, और वो जब नमाज हो रही होगी तो बड़ी स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा होगा। आपके लिए बेशुमार पार्किंग है, आमिर शमसी को भी आप कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का जिनके तवसुत से मैं ये प्रोग्राम पेश करती हूँ। ITN फूड का बहुत शुक्रिया, तमाम ग्रोसरी प्रोडक्ट्स जिसपे फ्रोजन आइटम्स भी हैं, जिसमें हर तरह के आइटम्स, ITN अपने किचन की जीनत बनाइए, ITN को। Stay tuned, it's a news time, let's go for the top of the hour and news.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر
6478724900।
اپنی کمیونٹی دا سب تو وڈا ودیا کوالٹی والا تے سب تو پرانا سوڈی فرنیچر ہر گھر دی پہچان بن چکی ہے۔
او پھر بنے بھی کیوں نہ، کیونکہ بیڈ روم سیٹ، صوفہ سیٹ، میٹریسز، ڈائننگ ٹیبل، ڈیکوریٹو آئٹمز، گل کیجیے سارے گھر دا فرنیچر ودیا کوالٹی تے ڈسکاؤنٹڈ پرائس تے مل جاندا سوڈی فرنیچر تو 3 سال لئی نو بیاج۔
142 کینیڈی روڈ، برامپٹن، 9058747171।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773, ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक यू थ्रू आउट ऑन्टेरियो, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी, क्विक ट्रक यू 519-622-0660, quicktruckcube.com। भाई खवातीन को तो जेवरात बहुत अच्छे लगते हैं, चूड़ियाँ ले लो, कड़े ले लो, चेन्स ले लो, स्टोन ज्वेलरीज, रूबी ज्वेलर्स का नाम याद रखना। शादी ब्याह है या आम कोई छोटा बर्थडे पार्टी अप या किसी को गिफ्ट देने के लिए, यू मस्ट विजिट रूबी ज्वेलर्स। गोल्ड का ट्रेड है या फिर रिपेयर है, रूबी ज्वेलर्स 7086 एयरपोर्ट रोड, 9056776888। अक्रम भाई या असलम भाई से बात कीजिएगा।
स्पीयर एंड मिके मेंसवियर क्लोथिंग, फिट क्वालिटी वैल्यू एक ही जगह पर। कनाडा में द ओनली साउथ एशियन ओन कस्टम सूटिंग एंड शर्टिंग कंपनी। बर्बरी, हैरी रोजन, होगो बॉस जैसी क्वालिटी आजमाइश शर्त है। 100% इटालियन वुड से बने सूट सिर्फ 249.99 में। और भी जबरदस्त डील्स के लिए विजिट करें स्पीयर एंड मिके मेंसवियर, 1535 मेरसा ड्राइव, यूनिट 1920, मिसिसागा। कॉल 9056703388, www.spearandmckay.com।
वालिया ट्रैफिक लीगल सर्विसेज से जनाब आरएस वालिया।
केयरलेस ड्राइविंग,
स्पीडिंग या फिर एक्सीडेंट,
फेल टू रिमेन स्टॉप एट द सीन,
रेड लाइट्स या फिर सीट बेल्ट,
परमिट ड्राइव विदाउट इंश्योरेंस,
रेसिंग, स्टूडेंट ड्राइविंग या फिर कॉट व्हाइल यूजिंग फोन,
स्पीडिंग,
आरएस वालिया आपकी टिकट से निजात दिलवाएंगे और आपके पॉइंट्स भी सेव करेंगे। 9054542112
ग्यारहवा सालाना हांडी मिसिसागा हलाल फूड फेस्टिवल,
जून 15 और जून 16 सैटरडे और संडे
एट सेलिब्रेशन स्क्वायर मिसिसागा, फ्री एडमिशन, फ्री पार्किंग।
परफॉर्मेंस बाय अली हैदर एंड लाइव परफॉर्मेंस बाय अमानत अली। फुल हंगामा फूड स्टॉल्स, किड्स जोन,
अरबिक डबका परफॉर्मेंस, तुर्की सूफी डांस, इंटरनेशनल हलाल फूड क्विजीन।
फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन आमिर शमसी 416-662-7861, 416-662-7861।
वेलकम बैक अगेन एंड 6:09 और 5 सेकंड हमारी घड़ी में हो चुके हैं। एंड चलिए फौरी तौर पर ले चलेंगे हम आपको न्यूज की जानिब। दिस पोर्शन ऑफ द न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय ओपन माइक कैफे, 1310 डंडास स्ट्रीट, डंडास एंड डिक्सी के कॉर्नर पर, 4165266800 इनका फोन नंबर है। ओपन माइक कैफे, पाकिस्तान के लजीज खाने खाने हो तो पहुंच जाइए इधर। डेंटिस्ट्री ऑफ मिसिसागा, हाँ, ओके चलिए पहुंच जाइए उधर। डेंटिस्ट्री ऑफ मिसिसागा डॉक्टर नाजिया रहमान होती हैं यहाँ पर। डॉक्टर नाजिया रहमान का कहना है कि भाई आप आइए, خود بھی آئیے اپنے بیوی بچوں کو لے کے آئیے. اگر آپ کے دانتوں میں کوئی خرابی ہو تو دونوں لوکیشن برامٹن کے علاقے میں 9058721100 ان کا فون نمبر ہے. قربانی کرنی ہے آپ نے, اور قربانی میں جو تیسرا حصہ ہے وہ آپ مسلم ویلفیئر کینیڈا کو دے سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان میں کروانی ہو تو $105 اور گوٹ کا جو ہے قربانی $200 میں آپ mwcanada.org پہ جا کے ساری کی ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں. نیوز ہو گئی ختم, اب کل ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام. آج تو آپ انڈیا کے کلرز پہن کے بیٹھے ہو مجید بھائی, کیا چکر ہے؟ آپ تو کہہ رہے تھے پاکستان جیتے گا.
نہیں
بتائے, نہیں اس کا جواب دیں, گھمانا نہیں ہے.
بتا رہا ہوں جواب, تو سنیں تو صحیح. آپ دو چوائسیز تھی, آپ کو پتا ہے کہ وحیدا جو ہے اس کا انڈیا سے تعلق ہے, وہ شی از انڈین, ویری پراؤڈ انڈین. اینڈ ہم لوگ کا تو جذباتی پاکستانی, ہم تو بڑے جذباتی پاکستانی ہیں, وی لو پاکستان. مگر ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر
پاکستان کے ہارنے کے بعد آپ نے بیگم سے ہاتھ ملا لیے,
پاکستان جیت گیا تو بھائی آپ کو پاکستانی بننا پڑے گا.
اچھا,
اگر پاکستان ہار گیا,
ایک ڈیل یہ چل رہی تھی,
تو صاحب خدا
میں بھی اسے ہاتھ ملا لوں گا.
ملا لیا.
اچھا, ایک ڈیل ادھر جو ہے کرکٹ ٹیم میں چل رہی تھی اور ایک ڈیل آپ کے گھر میں چل رہی تھی.
ہماری تو ڈیلیں چلتی رہتی ہیں, ادھر ڈیل ادھر ڈیل ادھر ڈیل ادھر ڈیل,
اسی میں 40 سال گزار دیے.
میرا بیٹا بھی پاکستانی ہے, میری ایک بیٹی بھی پاکستانی ہے, ایک بیٹی غدار نکل گئی. میرے بچوں کے بچے سارے پاکستانی ہیں.
او ہو ہو ہو, کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہ چھوٹا مٹھی بھی
سارے پاکستانی. محب وطن پاکستانی ہے.
اچھا,
اینڈ دے ویئر پاکستانی کی وہ
ہاں
جرسی
ناچ تو وہ کرتا ہے, گورے گورے پھکڑے پہ گالا گالا چشمہ.
سازو آواز ہے نا,
ڈانس تو اس میں کرتا ہے نا آپ کا چھوٹو. اچھا اچھا, وہ کلا تھا چشمہ لگا کے. اچھا اچھا, تو یہ چکر ہے, تو اس لیے آپ نے بیگم سے چونکہ ہاتھ ملا لیا تو آپ نے بلو پہنا ہے.
7 بجے جی آج کرکٹ کی بات ہوگی,
صرف کرکٹ کی.
ہنگامہ خیز
آج, بہت ہنگامہ ہونے والا ہے.
ہنگامہ خیز جو
پھڑا پھڑنا پھڑنا بھائی, ایسے کچھ نہیں کیتا.
ہنگامہ خیز گیم جو ہے اس کے متعلق شکر کریں میں نہیں ہوں ادھر. یہ پروگرام پیش کریں گے آپ کے لیے شازیہ جی, ذیشان احمد اینڈ عامر احمد. عامر احمد اینڈ شازیہ جی نے کالے کپڑے پہنے ہوئے.
اچھا, اصل میں فرائیڈے کو نا ایک آدمی آیا, وہ کہتا ہے شازیہ جی آپ پریڈکشن نہ کیا کرو, آپ کو بڑا اچھا. اس نے کہنا چاہتا تھا آپ کی کالی زبان ہے, کہتا ہے آپ کا بڑا کالا منہ ہے, آپ جو پریڈکشن کرتے ہو وہ نکل آتی ہے صحیح. یہ بھائی جان, دس از کالڈ ایکسپیرینس.
ایکسپیرینس ہوتا ہے زندگی میں آگے کا پوچھنا. ہاں,
مجھے تو لگ رہا ہے کہ بھائی صاحب یہ بیکار کام ہے جو میں کر رہی ہوں. میں تو سٹا بازی کروں پلیز, میری جو میں نے پریڈکشن کی ہیں وہ ساری صحیح آ رہی ہے. کوئی ایک
بندہ کروانی ہے آپ کو, پہنچ جائیے
میرے پاس. میں نے کیا کہا تھا مودی جی کے بارے میں, وہ دیکھو سارا کچھ سچ نکلا ہے. میں نے کیا کہا تھا پاکستان کے پہلے میچ کے بارے میں, کیا کہا تھا سیکنڈ میچ کے بارے میں, کیا کہا تھا فرائیڈے کو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ افغانستان جیت جائے گا نیوزی لینڈ سے. پائی جان ساری میری پریڈکشن تھی, پروگرام ریوائنڈ کر کے دیکھ لو. ہے جی, میں نے پائی جان ہوں یہ کام چھوڑ دینا ہے, میں نے اب اس میں سٹے بازی میں چلے. ٹھیک ہے,
پہلے
بنا کے
پہلے اس کے بعد مارگیج پیڈ آف,
پیڈ آف اس کے بعد جب 900 چوہے پورے ہو جائیں گے پھر میں حج پہ چلے جاؤں گی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی کیلڈن سبزی فارم, اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں جی ہر طرح کے پلانٹس اور فلاورز ہوتے ہیں, ویجیٹیبلز بھی ہوتی ہیں, لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا کہ پلانٹس اور فلاورز کے ساتھ ویجیٹیبلز کو اکٹھا ملا کے پکانا ہے. نہیں, پلانٹس اور
ساتھ آپ ان کو ایک کیاری میں
لگا سکتے ہیں, لیکن
بھی اچھا آئے گا آپ کا, اور آپ کا
پھول پھل بھی دونوں اچھے آئیں گے. ٹھیک ہے جی, لیکن پکانا اکٹھا نہیں ہے.
آم میں سے چمیلی کی خوشبو آ رہی
آ سکتی ہے. یس یس یس, لیکن ایسا نہ ہو کہ کدو کی سبزی میں سے چمیلی کی خوشبو آ رہی ہو نا, تو اس لیے ان کو علیحدہ علیحدہ پکانا ہے. ٹھیک ہے جناب, تو یہ ہیں, دے آر لوکیٹڈ ایٹ 12050 ایئرپورٹ روڈ کیلڈن, اور ان کا نمبر ہے 9058409000. اس کے علاوہ جناب پائل جیولرز, گرینڈ اوپننگ ان کی ہو چکی ہے, یعنی افتتاح کبیرہ ہو چکا ہے ان کا, اور یہاں پہ ان کے پاس بھی بڑی زبردست جیولری ہوتی ہے, دبئی سے, سنگاپور سے اور جگہوں سے یہ لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ کے कोई भी आपका कोई भी इवेंट है आपकी फैमिली का तो आप इनके पास आ सकते हैं. दे आर लोकेटेड एट 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव यूनिट 42 ब्रैम्पटन में और इनका नंबर है 9057907879. ऑन्टारियोज लार्जेस्ट हलाल पाकिस्तानी बफे विलेज टेस्ट, दो इनके भी रेस्टोरेंट्स हैं. आप इधर भी जाकर एंजॉय का मजा ले सकते हैं और खूब दुआ के खा सकते हैं जी. तो एक इनका रेस्टोरेंट है 4141 डिक्सी रोड मिसिसागा पे, इसका नंबर है 9052233663 और इसके अलावा जो दूसरा है वो ओकविल में है. इट इज लोकेटेड एट 2294 लेक शोर रोड वेस्ट, इसका नंबर है 9052262294. ठीक है जी. अच्छा जनाब. अच्छा जी, ये जो फॉरेन जो इंटरफेरेंस की बातें हैं ना, ये तो कुछ ज्यादा ही अब जोर पकड़ते चली जा रही हैं. वो जोर इसलिए पकड़ रही हैं कि आज पार्लियामेंट हिल के ऊपर भी बेतहाशा इसके ऊपर जो है वो बात हुई है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये रिपोर्ट आई है एक दिन पहले जिसमें कि कहा गया था कि ये फॉरेन इंटरफेरेंस है ज्यादातर जो है नंबर वन चाइना की तरफ से और फिर नंबर दो जो है इंडिया की तरफ से. उसके ऊपर आज वो डिस्कशन कर रहे हैं. उसके ऊपर वो डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि रिपोर्ट में नाम नहीं लिया गया था मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का. तो इस वक्त जो कहा जा रहा है कि भाई नाम बताओ कि कौन से पार्लियामेंटेरियंस जो हैं इसके अंदर शामिल हैं. इसके अंदर तकरीबन 4000 डॉक्यूमेंट्स और 1000 पीसेज ऑफ एविडेंस जो थी वो पेश की गई थी और उसमें कहा गया था कि बहुत सारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या के पॉलिटिशियंस होते हैं उनको इस तरह से उनके साथ दोस्ती बनाई जाती है कि उनसे बहुत सारा प्रिविलेज्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो ले लेते हैं ये फॉरेन डिप्लोमैट्स जो हैं वो, और अननोइंगली या नोइंगली या के अलेजली कैश के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन उनको दी जा रही है. और इसके ऊपर जो है वो काफी आज हंगामा हुआ. उन्होंने कहा जी कि ये जो फॉरेन इंटरफेरेंस हुई थी कनाडा के 2019 और 2021 इलेक्शंस के बीच में और ये जो रिपोर्ट ने सारा कुछ बयान किया था नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस कमेटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, तो उसने अब कहा है कि ये जो भी कोई हेल्प कर रहे हैं फॉरेन एक्टर्स को टू मेडल इन पॉलिटिकल कैंपेन्स एंड लीडरशिप रेसेस उनका सामने आना जरूरी है. पीए पॉलिवर जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं उन्होंने भी कहा जी कि जो RCMP ये जो इन्वेस्टिगेशन बिठाए हुए है इसके ऊपर तो क्रिमिनल चार्जेस आ सकते हैं. ये कमेटी ने ये वैसे कहा है लेकिन पीयर पॉलिवर ने कहा है कनेडियंस हैव द राइट टू नो कि ये कौन लोग शामिल हैं और कौन कौन जो है ये सब कुछ कर रहा है. तो इसलिए ये सारी चीज सामने आ. जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड से जब बात की गई तो उन्होंने रिपोर्टर्स को कहा कि हम इस इशू को बड़ा सीरियसली ले रहे हैं. इसके साथ साथ आज जो दूसरी बड़ी खबर थी क्रिस्टिया फ्रीलैंड से रिलेटेड वो ये थी कि आज उन्होंने प्रेजेंट किया था अपना जो ये कैपिटल गेन्स जो प्रपोजल था जिसका के नाम उन्होंने दिया है नोटिस ऑफ वेज एंड मींस मोशन, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि हम रिच लोग जो हैं उनको टैक्स करेंगे. तो ये सारी डिटेल्स जो हैं ये सामने आई हैं. कनाडा की रिसर्च यूनिवर्सिटीज जो हैं उन्होंने भी आज बहुत ज्यादा ये शो किया है कंसर्न के फॉरेन इन्फ्लुएंस ट्रांसपेरेंसी रजिस्ट्री जो है इसके खिलाफ उन्होंने वार्न किया है और उन्होंने कहा जी कि ये जो इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स इसके अंदर हो रही हैं इसके बड़े खराब इफेक्ट्स आ सकते हैं क्योंकि फिर अगर ये चीज को सारा ट्रांसपेरेंट ना रखा गया तो कनेडियन यूनिवर्सिटीज मिस करेंगी जो कटिंग एज अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें कि रिसर्च वगैरह शामिल है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगी. इसका जिक्र जो है बहुत सारे एमपीज ने भी किया था और उनको कहा था कि ये जो प्लान्ड रजिस्ट्री है जो कि अब डिस्कस की जा रही है हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर जिसको कि ये लोग क्लॉज बाय क्लॉज रिव्यू करेंगे और अभी बैठे हुए हैं कर भी रहे हैं, तो वो कहते हैं जी कि ये इंट्रोड्यूस करेगी न्यू क्रिमिनल प्रोविजंस अगेंस्ट डिसेप्टिव एक्ट्स और ये अलाउ करेंगी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बिजनेसेस के लिए और दूसरे गवर्नमेंट्स के लिए और जब ये सेटअप कर दी जाएगी तो इससे काफी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि फिर ये जो कुछ लोगों के जो कुछ स्टेट्स हैं उनके जो पॉलिटिकल गोल्स हैं वो इससे अचीव करने लगेंगे और ये चीज जो है ये सारी रिसर्च को खराब करेगी. तो इसके ऊपर नजर डालने की जरूरत है. इनोवेशन रिसर्च ग्रुप जो है उसका आज जो है कुछ आंकड़े सामने आए हैं यानी कि कुछ नंबर सामने आए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ट्रूडो साहब अगर लीड भी करेंगे लिबरल्स को या कि कोई और भी लिबरल पार्टी को अब लीड करेगा तो लग नहीं रहा है कि लिबरल पार्टी इस दफा जीतेगी. इस दफा लग रहा है कि पीएफ पॉलिवर जो है वो मेजोरिटी गवर्नमेंट अपनी बनाएंगे. अप्रैल के अंदर एक जो पोल हुआ था उसके अंदर भी बात ये सामने आई थी कि कंजर्वेटिव पार्टी जो है उसके पास 41% सपोर्ट है, लिबरल्स के पास 24% सपोर्ट है। 9 और 10 जो है उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि वो लिबरल्स को चाहे बैक करें चाहे ना करें लेकिन वो कंजर्वेटिव्स को अब रोक नहीं सकेंगे आने के लिए, और वो जो है 217 एटलीस्ट सीट्स कंजर्वेटिव पार्टी हाउस ऑफ कॉमन्स में जीतेगी अगर आज इलेक्शंस किए जाएं। लिबरल पार्टी जो है उसके पास 155 जो है वो सीट्स हैं विच इज अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट में, इसीलिए उनको अपने साथ जो था फिर वो एनडीपी को मिलाना पड़ा था। टोरीज जो है उनके पास इस वक्त 118 सीट्स हैं। जो हाउस है नए कुछ मेंबर्स को इंक्लूड करने के बाद 343 मेंबर का हाउस है और इसमें पार्टी को मेजोरिटी के लिए 172 सीट्स चाहिए होती हैं। तो 71% से जिनसे जब ये सर्वे किया गया इनोवेटिव रिसर्च वालों ने तो उन्होंने कहा जी इट्स टाइम फॉर चेंज। टूडो साहब जो हैं उनके पास अलबत्ता पेपिनो जो है वहां पे 26% फेवरेबल रेटिंग है, 58% अलबत्ता इनकी अनफेवरेबल रेटिंग है। यहां पे इस जगह पे कंजर्वेटिव्स की 21% रेटिंग है लेकिन वैसे अदरवाइज कंजर्वेटिव्स जो हैं वो थोड़ा आगे ही चल रहे हैं। तो ये अब टूडो साहब के लिए सोचने की बात है। आज मिसिसागा के अंदर जी वोटिंग हो रही है और आप लोगों ने जो रह रहे हैं वहां पे मिसिसागा में उसमें जरूर किया होगा। आज जून 10 को बाय इलेक्शंस वहां पे हो रहे हैं टू चूज द न्यू मेयर, क्योंकि आपको पता ही है कि जो बनी क्रॉम्बी थी शी स्टेप डाउन क्योंकि उन्होंने लिबरल पार्टी की जो ऑन्टेरियो की लीडरशिप थी रेस उसको लड़ा था और फिर वो जीती थी। तो ये जो कुछ बड़े कैंडिडेट्स हैं यहां पे उनके क्या प्रोमिसेज हैं उनके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो कैरोलिन पैरिश, ये तकरीबन 13 ईयर्स से एमपी हैं और काफी इन्होंने म्यूनिसिपल पॉलिसीज जो हैं सिंस 2006 उनको बढ़ाया था। इनके मुताबिक हाउसिंग पर्टिकुलरली अफोर्डेबल हाउसिंग जो है ये इनकी टॉप प्रायोरिटी है। दीपिका डमरेला जो कि वार्ड 7 से काउंसलर हैं सिंस 2018 और फॉर्मर लिबरल एमपीपी हैं वेन गवर्नमेंट की, उनके ख्याल में अफोर्डेबिलिटी और कंजेस्टन जो है बड़े इश्यूज हैं। एल्विन टैजडो जो कि यहां पर हमारे आए भी थे स्टूडियोज के अंदर आपको पता ही है वो फर्स्ट टाइम काउंसलर बने थे वार्ड 2 से, लेकिन इससे पहले वो मेट्रोनो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी शेरिटन कॉलेज और गवर्नमेंट ऑफ ऑन्टेरियो के साथ काम कर चुके हैं। वो कहते हैं जी कि जो प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं उनको फ्रीज करना चाहिए अंटिल 2026 और ये जो है मोर इन्वेस्टमेंट लेकर आएगी इसके अंदर शहर के अंदर। स्टीफन डास्को जो है वार्ड 1 काउंसलर वो कहते हैं कि क्राइम जो है वो यहां पे इस शहर का बहुत बड़ा इशू है। ब्रायन क्रॉम्बी जो फॉर्मर हस्बैंड हैं बॉनी क्रॉम्बी के वो भी कहते हैं कि टैक्सेस और अफोर्डेबिलिटी जो है वो दो बड़े इशू हैं। तो ये जो मेजर जो हैं कंटेस्टेंट्स उनके जनाब ये ख्यालात हैं। तकरीबन 100 के करीब वॉलंटियर्स जो था उन्होंने ज्वाइन किया था पियर्सन एयरपोर्ट के ऊपर, ये एक इमरजेंसी ड्रिल वहां पे की गई थी ओवर द वीकेंड, बड़ी लार्ज स्केल एक्सप्लोजन ड्रिल थी जिसमें कि अगर कोई वहां पे इमरजेंसी आ जाए तो कैसे फटाफट जो है एयरपोर्ट को बचाया जा सकता है और वहां पे प्रोसीजर्स जो हैं इन प्लेस होने चाहिए। तो ये जो है इन्होंने आइडेंटिफाई ये करना चाहते हैं असल में कि क्या शॉर्टफॉल्स हैं क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इमरजेंसी के सिलसिले में। तो 300 के करीब जो थे उन्होंने उससे पहले टर्मिनल 1 में ये किया था कि बॉम्ब का अगर थ्रेट आ जाएगा तो क्या करेंगे, और ये जो इनको सारा जो ये कहा जाता है करने के लिए कि ये एनुअल ड्रिल्स करें ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि आप एयरपोर्ट्स के ऊपर करें इस तरह की ड्रिल्स लार्ज स्केल इमरजेंसी ड्रिल्स ताकि पता चल सके कि अगर ऐसे कोई थ्रेट्स आ जाते हैं तो क्या उसका कर सकते हैं। खलील लैम्ब्रेट जो कि एयरपोर्ट के सीईओ हैं उन्होंने कहा कि हमारा टॉप प्रायोरिटी जो है वो यही है कि हम पोटेंशियल इमरजेंसीज जो हैं अगर वो आ जाती हैं तो उनको कैसे हम सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये जनाब आज की काफी इंटरेस्टिंग खबर रही जो उसके आज सोशल मीडिया के ऊपर पिक्चर्स देखी गई हैं। बेल्जियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने जनाब अपना रेजिग्नेशन दे दिया है और जैसे कि वहां पे फॉर्मली होता है कि वो किंग को जाके मिलते हैं और वो इसलिए जाके मिले और रेजिग्नेशन दिया क्योंकि उनकी जो फ्लेमिश लिबरल और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनको बड़ा हैवी डिफीट मिला जनरल इलेक्शंस में। अलेक्जेंडर क्रू जो हैं वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे जब तक कि नई कोलिशन जो है 7 पार्टीज की वो फॉर्म नहीं हो जाती है, और ये जो थी इलेक्शन हुए थे इसके अंदर राइट विंग न्यू फ्लेमिश अलायंस और फार राइट विलेम्स ब्लैंग जो पार्टी है वो जो है जीत के सामने आए थे। इसके साथ साथ जर्मनी के अंदर भी जो रूलिंग कोलिशन थी उसको बहुत सख्त किस्म की क्रशिंग डिफीट सीट मिली यूरोपियन पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस हो रहे थे, और चांसलर ओलाफ शोल्स के जो सोशल डेमोक्रेट्स हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान इसके अंदर उठाना पड़ा, और इतना नुकसान वो कहते हैं पूरी एक सेंचुरी में कभी इस पार्टी को नहीं हुआ है। तो इसके साथ साथ फ्रांस के अंदर भी यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर जो डिफीट हुई है फ्रांस को भी, उसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों जो हैं उन्होंने आज अनाउंस कर दिया कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि इलेक्शंस जो हैं वो होंगे लेटर दिस मंथ। ये रिजल्ट्स जो हैं ये सारे ये शो कर रहे हैं कि जो मरीन लपेन फार राइट नेशनल रैली जो है उनके पास 30% वोट्स थे, और मैक्रों साहब की जो रेनेसां पार्टी थी उसके पास सिर्फ 14.5 पॉइंट्स थे। तो काफी ये जो है बड़ी हलचल आई है यूरोप के अंदर, और काफी इसने जो है गवर्नमेंट जो सिटिंग गवर्नमेंट्स थी उनको जो है हिलाया। बहरेन जो है उसने जनाब एक रिक्वेस्ट भेजी है रशिया के थ्रू, और उन्होंने कहा जी कि हम ईरान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं अपने और बढ़ाने चाहते हैं, और उन्होंने अपने जो इनके जो प्रेसिडेंट के जो एडवाइजर हैं मोहम्मद जमशीदी, उन्होंने ईरान की जो न्यूज आउटलेट है उसके मुताबिक इन्होंने सारी ये डिटेल्स दी हैं। इन्हीं के मुताबिक जो इरानियन आउटलेट्स हैं उन्होंने कहा जी कि जो बहरीन के किंग थे हामद बिन ईसा अल खलीफा ये गए हुए थे अपने टाइज को बढ़ाने के लिए मॉस्को में, और उन्होंने कहा जी कि क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अब अपने टाइज नॉर्मलाइज कर लिए हैं ईरान के साथ तो हम भी ये इम्प्रूव करना चाहते हैं। इन्होंने तेहरान के साथ अपने ताल्लुकात 2016 में खत्म किए थे जब ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में टेंशन जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और फिर बहरीन ने ईरान को एक्यूज भी किया था कि जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए थे बहरीन के अंदर 2011 में उनके अंदर भी शायद ईरान जो है वो शामिल है। तो इसलिए अब ये चाहते हैं कि जी अब ये सारे रिलेशनशिप्स जो है मिडिल ईस्ट के अंदर इम्प्रूव किए जाएं। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज जो है वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उन्होंने बहुत ज्यादा कंडेम किया है ये जो एंटी जो ज्यू और एंटी सेमेटिक जो जो सेंटिमेंट है वो मुल्क में बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हुआ यह है कि वीकेंड के ऊपर जो यूएस काउंसलेट था सिडनी के अंदर उसके अंदर हैमर स्लेजिंग की गई है, और इसके अलावा जो वहां पे जो उनकी एक दीवार है उसके ऊपर प्रो पैलेस्टीनियन ग्रेफिटी जो है वो बनाई गई है, और देखा यह जा रहा है कि एक हुड पहना हुआ है कोई लड़की या लड़का वो यहां पे आए हैं, उन्होंने पहले तो इनके विंडोज जो है काउंसलेट के स्मैश किए हैं, और फिर कुछ स्प्रे पेंट किया है रेड में, कुछ इन्वर्टेड ट्रायंगल्स बनाए हैं, और ये साइन है पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का जो देखा गया है। इसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि जो ये मसाइल हैं मिडिल ईस्ट में ये बड़े ही कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट हैं, लेकिन यूएस काउंसलेट के अंदर ये सब कुछ करने से आपके मसले जो हैं वो हल नहीं होंगे, तो आप इस तरह की हरकतें जो हैं वो ना करें। तो ये सारी बातें जो हैं जनाब आज ऑस्ट्रेलिया में भी चीजें जो हैं काफी वहां पे भी प्रो पैलेस्टीनियन जो हैं आए हुए हैं प्रोटेस्ट आए हुए हैं, तो उसके ऊपर काफी मारामारी चल रही है। डेथ टोल जो है जी इसराइल के अंदर वो बढ़ती ही चली जा रही है, और वीकेंड के ऊपर और 226 लोगों को इसराइल ने मारा, और ओवर 400 जो है वो वुंडेड हैं। इन्होंने अटैक्स किए थे एयर लैंड और सी से नसीरात के अंदर और दीर अल बलाल के अंदर सेंट्रल गाजा के अंदर, और जो अल अक्सा हॉस्पिटल के अंदर तो एक कंप्लीट लग रहा है कि ब्लड बाथ इन्होंने जो है इजरायलीज ने किया है। गाजा की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने तो कहा है कि अब का जो ये अटैक था उससे बॉडीज और वुंडेड लोग सारे के सारे स्ट्रीट्स के ऊपर स्कैटर्ड हैं, बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं स्कैटर्ड ऑन द स्ट्रीट्स। यूरोपियन यूनियन ने ये जो नसीरात का अटैक है इसको मैसेकर कहा है, और ये कहा है कि ये जो अल अक्सा हॉस्पिटल के अंदर जो मंजर है वो एक स्लॉटर हाउस का मंजर जो है वो पे कर रहे हैं। डजन्स ऑफ एयर रेड्स जिन्होंने के हिट किया था रफा के अंदर उसकी वजह से ये सारा कुछ जो है वो देखा जा रहा है। अक्टूबर 7 के बाद से इसराइल ने जो अभी तक 37,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस को मार दिया है, और 84,494 के करीब जो है बड़ा सिवियरली वुंडेड हैं। जोसेफ बोरेल जो कि यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं उन्होंने कहा है एक्स के ऊपर कि ये जो ब्लड बाथ है ये इमीडिएटली रुक जाना चाहिए। आंद्रे क्रेविक जो कि डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं नॉर्वे के उन्होंने भी एक्स के ऊपर लिखा कि ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जिस तरह से सिविलियंस को मैसेकर गाजा में किया जा रहा है इंतहाई अपॉलिंग है, और उसको फौरन ये जो है बड़ा कंडेम करते हैं सिविलियंस के ऊपर अटैक इनको रोकना चाहिए। इसके अलावा ओआईसी तुर्की ईरान जॉर्डन इजिप्ट ने भी इन हॉरिफिक क्राइम्स के लिए इसराइल को कंडेम किया है। मार्टिन ग्रिफिथ यूनाइटेड नेशंस के जो रिलीफ चीफ हैं उन्होंने कहा कि नसीरात के रिफ्यूजी कैंप जो है वो एपी सेंटर ऑफ सिस्मिक ट्रॉमा जो है वो बन गया है, जहां पे कॉन्स्टेंटली सिविलियंस जो हैं वो सफर कर रहे हैं और ये वॉर को एंड होना चाहिए। लेकिन इसके बीच में नतन्याहू साहब ने कहा है जी कि नसीरात ऑपरेशन जो है वो हिस्ट्री के अंदर लिखा जाएगा, क्योंकि इजरायली पुलिस जो है उन्होंने इसके ऊपर अटैक करके और चार जो कैप्टिव्स थे उनको छुड़ाया है। इसके अलावा इजरायली मिलिट्री जो है उन्होंने अभी अपने कमांडोज जो है उनको शाबाशी दी फॉर डे लाइट ऑपरेशन के लिए। बाइडन साहब ने भी बड़ी इनकी तारीफ की है और कहा है जी कि कमाल कर दिया है, बगैर लोगों को मारे हुए इन्होंने ये ऑपरेशन किया है। मैक्रों साहब और सुनक साहब जो हैं उन्होंने भी बड़ी मुबारकबाद दी है, लेकिन शायद मेरे ख्याल में मैक्रों साहब, सुनक साहब, बाइडन साहब बिल्कुल शायद अंधे हो गए हैं, उनको नजर बिल्कुल नहीं आ रहा है जिस तरह से ब्लड बाथ जो कि बाकी के लोग कर रहे हैं, कि कह रहे हैं कि वो जो मचाया हुआ है इसराइल ने गाजा के अंदर, तो नजर नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना अल्लाह की लाठी बे आवाज होती है, इंशाल्लाह आपके ऊपर भी आएगी और जब आएगी तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आप कैसे हवा में रूई के गालों की तरह उड़ेंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह का अजाब आएगा इंशाल्लाह आप सब पे, जिस तरह से आपने एक नहत्ते सिविलियंस को, बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को जिस तरह से आपने कत्ल किया है, ये आपकी जो हिस्ट्री है, मैं यू कैन राइट माई एंड मार्क माई वर्ड्स टूडे, जैसे आपकी हिस्ट्री में बदनाम जमाना होलोकॉस्ट हुआ था ना, इसी तरह आपकी यूरोप की हिस्ट्री के अंदर ये जो आपने एथनिक क्लेंजिंग की है पैलेस्टीनियंस की, ये भी काले शब्दों से ये हिस्ट्री लिखी जाएगी। और इस सब के मुजरिम जो हैं, सुनक साहब आप हैं, मैक्रों साहब आप हैं, बाइडन साहब आप हैं, आप सब जो इस चीज को एंडोर्स कर रहे हैं, इसको नहीं रोक रहे हैं, आपके ऊपर भी इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द आपको भी पता चलेगा कि इतने जुल्म का जो है वो क्या जवाब हो सकता है। नहते लोगों के साथ जैसे आपने खिलवाड़ किया है, इतनी बड़ी ताकतें होने के बावजूद आपने जो रोकने की कोशिश, ब्लडशेड को नहीं करने की कोशिश की है, इसका आपको भी जवाब देना पड़ेगा। हजरत उमर का हम तो यही मानते हैं, हजरत उमर का जो एक कहना था, आपको पता है कि उन्होंने एक दफा कहा था कि अगर अरफात के किनारे पे एक कुत्ता भी भूखा सोता है तो उसका जवाब भी अल्लाह ताला उमर से लेगा। इतने लोगों का जो मर्डर आप लोगों ने की वजह से हुआ है, आपको क्या लगता है कि अल्लाह आपसे पूछेगा नहीं? लेकिन शायद आपको ना तो आप रिलीजन पे बिलीव करते हैं, आपकी चॉइस है, हमको एतराज नहीं करते, लेकिन ना तो आप इन चीजों पे बिलीव करते हैं ना आपको लगता है कि कोई डिवाइन जो है पावर वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो करती है और वो फिर अपना बदला लेती है और जैसे लेगी फिर वो आपको पता चलेगा। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब जो है वो जनाब फिर से एक दफा आठ महीने में आठवीं दफा जो है ये मिडिल ईस्ट में पहुंचे हुए हैं। मुझे तो पता नहीं चल रहा कि ये मिडिल ईस्ट में क्यों आ जाते हैं, घूमने फिरने आते हैं, इनके पास और कोई अमरीका में काम नहीं है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब को, या क्या चक्कर है? क्योंकि मिडिल ईस्ट में ही आ जाते हैं, बातें जीते करते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं, फिर वापस चले, यानी आठ महीने से इनका यही ड्रामा चल रहा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब का। ये आते हैं यहाँ पे, ओ जी मैं इजिप्ट से बात करने आ रहा हूँ, कतर से बात करने आ रहा हूँ, जॉर्डन से बात करने आ रहा हूँ, बस बातें करते हैं जी, मैं इसराइल से बात, पता नहीं फिर क्या बातें करते हैं। या तो फिर मुझे यही कहना चाहिए कि सर आप इस केपेबल ही नहीं है कि आप इस पोस्ट पे होने चाहिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब, आप छोड़ दें ये पोस्ट, क्योंकि चीज तो आप आठ महीने में कुछ भी हल नहीं कर सके, और चीज एक ही थी कि ये गाजा की वॉर आपने रुकवानी थी, जो कि आप बिल्कुल फेल हो गया। तो आज जी फिर ये इधर पहुंचे हुए हैं और आज इनकी मुलाकातें जो हैं इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ हुई हैं, और उसके बाद इन्होंने मुलाकातें की हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर नतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट के साथ, और ये जो रफा का बॉर्डर है इसको रीओपन करने की इन्होंने बात की है। भाईजान लोग ही मर जाएंगे तो रफा के बॉर्डर से आप जो फूड भिजवाएंगे वो खाएगा कौन? चिड़ियां, कुत्ते, बिलियां, बंदे तो आपने मरवा दिए हैं वहां पे, ये 37,000 के करीब तो पैलेस्टीनियन मर गया, जो बाकी भी रह गए बेचारे वो भी मर जाएंगे, तो आप ये रफा का बॉर्डर खुलवा ली भी लेंगे, एड भेज भी देंगे, तो उसको उसका क्या फायदा है? वॉर रुकवाएं ना आप, वॉर रुकवाएं। अब इसके बाद जो है इन्होंने जाना है जी जॉर्डन और कतर भी, और वहां पे भी जाके ये ऑफिशियल्स के साथ बात करेंगे। बहरहाल मेरा तो ख्याल है एंथनी ब्लिंकन साहब आपको बिल्कुल, अगर थोड़ी सी भी माशाल्लाह आप में शर्म है, आप रिजाइन कर दें अपनी पोस्ट से, क्योंकि जीरो आपका जो है कोई पुल है और जीरो आपने कोई मसला हल किया ये आठ महीनों के अंदर। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की जनाब आज ये खबर है, और इसके ऊपर आज जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है और वैसे भी जो अमेरिकन पॉलिटिक्स है उसके अंदर फिर से जो है बड़ी जरा थोड़ी सी खलबली सी मची है। उसकी वजह यह है कि आज फिर से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि अमेरिका कॉन्स्टेंटली, हालांकि ये मिडिल ईस्ट की वॉर चल रही है, लेकिन ये सऊदी अरेबिया के साथ बात कर रहा है ताकि इसराइल के साथ जो है दोस्तियां बना सके। आपको पता ही है कि बाइडन साहब भी बड़ी उन्होंने मुलाकातें की हैं जो मोहम्मद बिन सलमान से ऑयल के सिलसिले में भी और इसराइल के साथ दोस्ती के सिलसिले में भी, और जिस वक्त जब एंथनी ब्लिंकन साहब भी रीजन के अंदर जाते हैं तो वो रियाद को कहते हैं कि आप दोस्ती बनाओ भाई उसके साथ, इसराइल के साथ। अलबत्ता अभी तक जो सऊदी अरेबिया है उसने ये कहा है कि जब तक अब पैलेस्टीनियन स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट जो है इसराइल उसको कबूल नहीं करेगा, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि आप हमको आर्म्स जो आपने हमारे लिए प्रॉमिस किए थे वो आप रिलीज नहीं करेंगे, हम चीजों को आगे लेकर नहीं जाएंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि इनकी ये बहुत ही मेगा डील है जिसपे अमरीका कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है, और वो चाहता है कि ये इनकी बहुत बड़ी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की जियोपॉलिटिकल अचीवमेंट होगी, क्योंकि जाहिर है कि जो ट्रंप साहब ने काम किया था उसको ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया जा सका था, ट्रंप साहब जो है सऊदी अरेबिया को ऑन बोर्ड नहीं ला सके थे। तो अब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि सऊदी जो है जैसा मुल्क है बड़ा उसकी जो है दोस्ती इसराइल के साथ कराई जाए, क्योंकि ये सारे जो है ईरान को थ्रेट समझते हैं और चाइना जो है वो भी अपना इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रीजन के अंदर बढ़ाता चला जा रहा है। वॉल स्ट्रीट का कहना है कि सऊदी और यूएस ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने भी ऑन द बेसिस ऑफ एनोनिमिटी इनके साथ बात की है, और उन्होंने कहा जी कि ये पिछले महीने सारी टॉक्स कंप्लीट हो गई थी जिस वक्त यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन और सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस के बीच में बातचीत चल रही थी। इन अगस्त 2022 स्टेट डिपार्टमेंट ने यह भी कहा था कि हमने सऊदी अरेबिया के लिए $3 बिलियन वर्थ ऑफ पेट्रियट मिसल्स की सेल जो है वो भी अप्रूव की है, लेकिन ये सारी की सारी बात जिस वक्त गाजा में वॉर शुरू हुई थी तो ये जो थी थोड़ी ठंडी पड़ गई थी, लेकिन वॉल स्ट्रीट के मुताबिक ये चल रही है कॉन्स्टेंटली। तो अगर ये डील हुई तो इसमें तीन चीजें होंगी, एक तो अमरीका ये सारे जो वेपन्स है ये सऊदी अरेबिया को देगा, नंबर दो डेफिनेटली वॉर का रुकना जरूरी है मिडल ईस्ट के अंदर और पैलेस्टीनियन स्टेट जो है उसका कायम होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें, हालांकि वो कहते हैं कि ये डिफरेंट किस्म के दो डिफरेंट पैक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी ये सब कुछ जो है एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। तो ये जब तक ये नहीं, एक भी बात नहीं मानी जाएगी तो ये डील जो है इट विल नॉट मूव फॉरवर्ड। अच्छा जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल, और इसमें 1400 लोगों को आप बुला सकते हैं, जिसमें अगर आप चाहें तो आप ढाई बंदा और बुला सकते हैं 770 का, ऑब्वियस सस्पेक्ट्स ही हैं वो, तो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं आपको पता ही है, मैं क्या बार बार नाम बताऊं, अच्छा नहीं लगता ऐसे, है ना, तो आप बुला सकते हैं उनको। अच्छा जी, दे आर लोकेटेड एट 2935 ड्यू रोड मिसिसागा में, और इनका नंबर है 6479653823। एंड डॉक्टर फियाज कुरैशी बड़े जबरदस्त किस्म के डॉक्टर हैं, तीन इनके क्लिनिक्स हैं, दो मिसिसागा में हैं और एक स्कार्ब्रो में है। मिसिसागा का नंबर है 9052325678 और स्कार्ब्रो में जो इनका क्लिनिक है उसका नंबर है 4167579999। कोई भी आपको दांतों से रिलेटेड सुविधाएं चाहिए तो आप इनके पास जाएं। एंड जनाब राजा थे बादशाह जी, दिल दे राजा थे बादशाह भी है जी, कहते हैं बहुत जबरदस्त आपको मैं ऑटो और घर की इंश्योरेंस देता हूं, बस आ जाओ मेरे पास, फिर आप देखो मैं आपको कितने लंबे पैसे बचाता हूं, है जी। तो ऑल स्टेट के साथ काम करते हैं राजा बादशाह जी, अगर आपको भी और पता चलाना है कि कितने पैसे आप बचा सकते हैं तो इनको कॉल कर लें 8647209037733। आज ISPR की एक प्रेस रिलीज आई है और उसके मुताबिक पाकिस्तान आर्मी के साथ जो सोल्जर्स हैं इंक्लूडिंग अ कैप्टन, उनकी आज डेथ हुई है जब उनकी गाड़ी जो थी उसके साथ एक टक्कर मारी गई है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस IED जो एक स्कूटर में थी उसने आके इनके ऊपर किया केपी के लकी मरवत एरिया में। इसमें जो कैप्टन साहब थे मोहम्मद फराज इलियास, बहुत ही यंग कैप्टन थे, 26 इयर्स उनकी एज थी, कसूर के इलाके से थे, अलॉन्ग विद 6 अदर्स उनकी डेथ हुई है। बाकी जो हैं वो सूबेदार मेजर मोहम्मद नजीर 50 इयर्स इनकी एज थी, स्कर्दू से थे, लांस नायक मोहम्मद अनवर 34 फ्रॉम गांची, लांस नायक मोहम्मद अली 36 फ्रॉम गिजर, सिपाही असद उल्लाह 33 फ्रॉम मुल्तान, सिपाही मंजूर हुसैन 27 फ्रॉम गिलगित, एंड सिपाही राशिद महमूद 31 फ्रॉम रावलपिंडी। कैप्टन फराज की इसलिए ज्यादा आज लोगों को तकलीफ हुई क्योंकि उनकी वेडिंग होने वाली थी 19 जून को और इनके घर में शादी के जो हैं वो प्रेपरेशंस और ढोलकियां और वो सब कुछ चल रहा था। इनकी डेथ के ऊपर और बाकियों की भी डेथ के ऊपर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और जो प्रेसिडेंट जरदारी हैं उन्होंने बहुत अफसोस का इजहार किया। प्राइम मिनिस्टर जो हैं आज कैप्टन फराज के घर पे पहुंचे हुए थे और वहां पे जो इनके फ्यूनरल की वो थी उसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया और फैमिली के साथ अफसोस का इजहार किया। तो बहुत ही ज्यादा दुख की जनाब ये खबर थी। पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब खान साहब, उनकी जो बेल पटीशन थी 9 मई के राइट्स के सिलसिले में, उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि आज जिस वक्त इन्होंने कोर्ट में आने की कोशिश की तो बहुत सारे पुलिस के बंदे वहां पे खड़े हुए थे और उन्होंने इनको रोका और उमर अयूब साहब को वहां पे कोर्ट के अंदर जाने नहीं दिया गया, जिसके के ऊपर उनके जो लॉयर थे उन्होंने कहा जी कि जानबूझ के उनको रोका गया ताकि ये कोर्ट के अंदर ना पहुंच सकें, और कहा हमें ये कहा है जी कि जी ये सिक्योरिटी के मामले में सारा कुछ हो रहा है। अमजद खान नियाजी, मलिक एहसानुल्लाह टिवाना और भी बहुत सारे जो लोग हैं पीटीआई के, उन सबको जो है उनके ऊपर भी ये मुकदमे हैं और उनको भी अदालत ने कहा है कि आप आके जो है ये मई 9 के जो राइट्स हैं सिलसिले में केसेस आज भुगते हैं। जो इनके लॉयर हैं उमर साहब के, बाबर अवान, उन्होंने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो फायज ईसा साहब जो हैं उनको आज कहा है कि आप इस चीज का नोटिस लें, अगर आप हमें जस्टिस नहीं देंगे तो किस दरवाजे पे जाके हम जो कौन सा दरवाजा फिर हम और खटखटाएंगे। और आज ये बिल्कुल आना चाहते थे और अपनी बेल लेना चाहते थे लेकिन जो है इनको आने ही नहीं दिया गया, तो आप इस चीज का नोटिस लें। पीटीआई के बहुत सारे जो लीडर्स हैं उनको बुक किया गया है अंडर एंटी स्टेट ऑन प्रोवोकेटिव स्पीचेस जो के वो कर रहे हैं पब्लिक गैदरिंग्स में। पिशन बोस्तन का जो एरिया है वहां पे लीवाइज पुलिस स्टेशन जो है उसने इन सब के खिलाफ जो है एफआईआर लिखी है। ये सब जो पीटीआई के ऑफिशियल्स हैं इनमें शाहीन शाह अफरीदी, शंदाना गुलजार, हलीम आदल शेख, दाऊद शाह काकड़, मोजम बट एडवोकेट, अशफाक एडवोकेट, अब्दुल बारी बरीच, अब्दुल रहीम काकड़, अकरम तरीन, अब्दुल बारी अतीक खान, सादक तरीन, नवाबजादा शरीफ जोगजई और नूर खान खिलजी जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन अभी तक जो है इनको सिर्फ जो है वो बताया गया है कि आपको बुक किया जाएगा प्रोवोकेटिव स्पीचेस के लिए, लेकिन अभी तक इनके अरेस्ट नहीं हुए हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर जाहिर है कि अरेस्ट भी इनके आ सकते हैं। आज मोदी जी ने शरीफ ब्रदरान जो हैं उनके जो कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस आए थे उनका बड़ा शुक्रिया जो है वो अदा किया है। थर्ड टाइम ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं और इनकी स्वेरिंग इन जो सेरेमनी थी वो संडे को थी, जिसमें के बहुत सारे लीडर्स फ्रॉम बांग्लादेश, मालदीव्स और श्रीलंका शामिल थे। चाइना और पाकिस्तान का कोई लीडर भी मौजूद नहीं था। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने मोदी जी को एक्स के ऊपर मुबारकबाद देते हुए कहा कि मैं जो है बहुत खुश हूं कि आप फिर से प्राइम मिनिस्टर बने हैं और आपके साथ हम काम करना चाहेंगे। इसी तरह पीएमएलएन के प्रेसिडेंट नवाज शरीफ साहब ने भी इनको दी और उन्होंने कहा जी कि बीजेपी की सक्सेस बार बार ये शो करती है कि आपके लोगों का कॉन्फिडेंस है आपकी लीडरशिप के अंदर, तो हमको हेट की सियासत को छोड़ के होप की तरफ जाना चाहिए और साउथ एशिया के अंदर एक नई डेस्टिनी 2 बिलियन लोगों के लिए हमको बनानी चाहिए। इसका जवाब देते हुए मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का तो शुक्रिया अदा किया, लेकिन नवाज शरीफ साहब को जवाब देते हैं उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो पीस, प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी और प्रोग्रेसिव आइडियाज के साथ खड़े होते हैं, हां अलबत्ता उनकी वेलबींग और उनकी सिक्योरिटी जो है हमारी प्रायोरिटी है। यानी कि इनडायरेक्ट इनके मुंह पे चमाटा मार दिया है जी कि पायन अपनी दोस्ती अपनी जेब में रखो, हमको आपके साथ दोस्ती नहीं चाहिए। तो ऐसे है, बहरहाल पता नहीं समझ आई है नवाज शरीफ साहब को कि नहीं, बहरहाल ऐसे है। और जनाब आज जो है मोदी जी की कैबिनेट जो है उसको अनाउंस किया गया है। मोदी जी की कैबिनेट जो है आपको पता ही है कि जब इनकी अपस्वेयरिंग इन हो गई थी तो आज मंडे को इन्होंने अपने मिनिस्टर्स करने थे अनाउंस। जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था ऑफिशियली, और ये जो इवेंट था इसको अटेंड किया था बहुत लार्ज नंबर में लोगों ने और बॉलीवुड के स्टार्स भी आए हुए थे। तो इन्होंने अब अपनी एनडीए की गवर्नमेंट जो है फिर से बनाई है, इसमें 30 मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, 36 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं, 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज हैं फ्रॉम बीजेपी एंड विद एलाइज। मोदी जी जो हैं वो अब सेकंड प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जवाहरलाल नेहरू के बाद के, जिनको कि ये तीसरी बार इन्होंने ये जीती है, लेकिन जाहिर है कि इस दफा इन्होंने बड़ी फोर्स से नहीं जीती, इनकी सीटें जो थीं वो मेजोरिटी के पास नहीं थीं, इसीलिए इनका जो अब बड़ा अलायंस इन्होंने जो मेजर अलायंस बनाया वो जेडीयू, टीडीपी, शिवसेना, एलजेपी और दूसरों के साथ मिलकर बनाया। जैसे कि हमने आपको पूरी स्टोरी बताई थी फ्राइडे वाले दिन के, जो जेडीयू खासतौर पे और टीडीपी हैं उनके बहुत टॉल टारगेट्स जो उन्होंने रखे हैं इनके सामने कि ये करोगे तो फिर हम आपके साथ बैठेंगे, तो लगता यही है कि मोदी जी ने इनकी सब बातें मान ली हैं। टीडीपी और जेडीयू हैं जो ये आपको पता ही है बहुत ही क्रूशल एलाइज हैं। टीडीपी के पास 16 सीट्स हैं, जेडीयू के पास 12 एमपीज हैं। ये जो कैबिनेट है जिसको कि अब कैबिनेट 3.0 कहा जा रहा है, इसके अंदर वो कहते हैं जी कि हमने बहुत सारा एक्सपीरियंस और विजन और एक्सपर्टीज वाले लोग जो हैं उनको शामिल किया है। इसमें इसके अलावा 27 मिनिस्टर्स फ्रॉम अदर बैकवर्ड क्लासेस जिनको कि ये ओबीसी कहते हैं उनको शामिल किया गया है, 10 स्केड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, 5 स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं और 5 लोग जो हैं माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं। मगर लोगों को आज बड़ी हैरत हुई कि इस कैबिनेट के अंदर कोई भी मुस्लिम चेहरा जो है वो नजर नहीं आया। हिंदुस्तान का जो जम्मू और कश्मीर है उसके अंदर आज हिंदुस्तान ने बगैर कोई मतलब एविडेंस लिए हुए, क्योंकि किसी ग्रुप ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, लेकिन उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान बैक्ड मिलिटेंट्स जो हैं उन्होंने एक बस जो कि कैरी कर रही थी हिंदू पिलग्रिम्स को उनके ऊपर अटैक किया है और वो बस जो थी एक गॉर्ज में जाके गिरी थी और उसकी वजह से 9 लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई थी। ये लोग जो हैं हिंदू टेम्पल माता वैष्णो देवी जो हैं उसको जा रहे थे जब इनके ऊपर अटैक आया था रायसी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और पुलिस कहती है कि जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट जो है वो फायरिंग की जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो वुंडेड हो गए हैं। और एकदम से उन्होंने कहा जी कि मुस्लिम मिलिटेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, 33 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं। प्रेसिडेंट मुर्मू जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह और कांग्रेस के लीडर्स मलिक अर्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी, फॉर्मर जम्मू और कश्मीर के चीफ मिनिस्टर्स उमर अब्दुल्ला और महमूदा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद, इन सब ने इस अटैक को कंडेम किया है और जो मर गए हैं उनके लिए अफसोस का इजहार किया है। मोदी जी ने अलबत्ता जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जम्मू और कश्मीर के अंदर उनको कहा है कि भई आप ये सारी की सारी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाएं और जो अफेक्टेड लोग हैं उनकी फौरन हेल्प करें। हमने आपको कोई 2 हफ्ते पहले बताया था कि बिग बॉस में अब नजर आएंगे आपको अनिल कपूर सलमान खान के बजाय, क्योंकि सलमान खान एक फिल्म के अंदर जो है वो बड़े बिजी हो गए हैं। तो आज जो है ये सामने अनाउंसमेंट आई है कि बिग बॉस जो है ओटीटी के ऊपर June 21st से 9 PM जियो सिनेमा के ऊपर देखा जाएगा। और इसका एक जो प्रमोशनल वीडियो आया है उसमें अनिल कपूर कह रहे हैं बहुत हुआ झकास, इस बार करते हैं कुछ खास। तो इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो हैरान भी हुए हैं, तो उन्होंने कहा जी कि बहुत सारे मैं सरप्राइजेस लेके आ रहा हूं। ये 1 मिनट 15 सेकंड का वीडियो है। एक आदमी जो है उसने बड़ा इनका मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा क्या है बाकी अब अनिल कपूर, तो अनिल कपूर ने इसमें कहा अभी तो बस शुरू किया है, अभी सब बदलेगा। तो अब देखेंगे जी क्या इसमें चीजें बदलेंगी, क्या आएगा नया। द ग्रेट इंडियन कपिल शो, पहले तो आपको पता है ये कपिल शर्मा शो होता था, अब इसका नाम उन्होंने चेंज करके द ग्रेट इंडियन कपिल शो कर दिया है। इसके अंदर सोनाक्षी सिन्हा जो थी वो आई थी और उससे पूछा गया कि भई आप शादी कब करोगी, तो उसने कहा मुझे कितना जोर से शादी करना है, तो इन्होंने एक हिंट दिया था। लेकिन अब चीजें जो है सामने आना शुरू हो गई हैं, शी हैज बीन डेटिंग जहीर इकबाल फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, तो अब ये बात सामने आ रही है कि इनकी शादी जो है June 23rd को हो सकती है और साउथ मुंबई की ईटरी या बैस्टियन उसके अंदर होगी। बाकी के जो इनके इवेंट्स हैं, इनका जो घर है जुहू में वहां पे होगा, लेकिन इसके अंदर सिर्फ बहुत ही क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स को इनवाइट किया जाएगा। 23rd की सुबह वेडिंग होगी और जो रिसेप्शन है वो शाम को होगा। सोर्सेज जो हैं वो कहते हैं कि सोनाक्षी बहुत बड़ा हंगामा नहीं चाहती है और वो चीजों को बहुत ही क्वाइट और क्लोज रखना चाहती है। नाग अश्विन की जो फिल्म है कालकी 2898 AD जिसके के अंदर दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन भी हैं प्रभास के साथ, उसका जो एक्शन थ्रिलर ट्रेलर है वो सामने आया है और उसके ऊपर भी मिक्स किस्म के रिव्यूज आए हैं। कुछ लोगों ने तो उसके एक्शन और VFX की बड़ी तारीफें की हैं, दूसरों ने कहा ओहो ये तो सारी चोरी आपने ड्यून से किया है, ड्यून Part 2 से। कुछ ने कहा वाओ व्हाट अ वंडरफुल वर्क, कुछ ने कहा कि प्रभास इज लुकिंग सो कूल, किसी ने कहा कि ओ इट्स जस्ट अ मिक्सचर ऑफ ड्यून एंड स्टार वॉर्स। कुछ लोगों ने कहा हम सल्यूट करते हैं नाग अश्विन को कि ये मास्टरपीस वो हिंदुस्तान में क्रिएट कर रहे हैं। और जी अब जिसके लिए हमने काला जोड़ा पहना है तीनू काला चश्मा जिस तरह जी घोड़े मुखड़े थे, तो वो घोड़े मुखड़े जो हमारे थे जो मैदान में उतरे थे इंडिया के साथ खेलने के लिए वीकेंड के ऊपर, वो घोड़े मुखड़े जो है अब घोड़े शायद नहीं रहेंगे। पाकिस्तान ने जबरदस्त बोलिंग करते हुए हिंदुस्तान को ओवर द वीकेंड संडे के दिन June 9th को जो मैच था उसमें 119 पे आउट कर लिया था और 120 का इनके पास टारगेट था, लेकिन हिंदुस्तान ने इनको 113.7 पे रिस्ट्रिक्ट किया। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान लॉस्ट बाय 6 रन्स। बाबर आजम ने पहले टॉस जीता था एंड ही इलेक्टेड टू बोल फर्स्ट, हालांकि हमेशा कहते हैं कि आपको जो है वो चेज कर सकते हैं आप, लेकिन पता नहीं क्यों चेज नहीं कर सके। तो बहरहाल जी, नसीम शाह जो और हारिस रऊफ थे, उन्होंने जबरदस्त तबाही कुन बॉलिंग करते हुए तीन तीन विकेट्स ली थी, लेकिन ऋषभ पंत जो थे, जिनको सारे हमारे पैंट पैंट बेचारे को कहते रहते हैं, ऋषभ पंत जो है उसने जबरदस्त जो है वो बैटिंग करते हुए 42 रन बनाए थे। हमारे रिजवान ने भी 31 बनाए थे, लेकिन फिर उसके बाद जो है रेगुलर इंटरवल से पाकिस्तान की विकेट्स गिरती रही। बुमराह ने तबाही कुन बॉलिंग करते हुए 14 रन पे तीन लोगों को आउट किया। पाकिस्तान जो था वो 80 for 4 था इन 14 ओवर्स, और उसको सिर्फ 40 रन चाहिए थे इन 36 बॉल्स, लेकिन वो हासिल ना कर सके। नसीम शाह जो है वो बेचारा बच्चा रो पड़ा, उसने 10 रन बनाए थे 4 बॉल्स पे, जिसमें के 2 बाउंड्रीज भी शामिल थी, जिसपे के जो लोग हैं बड़े उदास हुए। पाकिस्तान जो है अब सिर्फ एक सूरत में सुपर 8 में क्वालिफाई कर सकता है, अगर वो नेक्स्ट 2 मैचेस जीतेगा और यूएसए अपने नेक्स्ट 2 मैचेस हारेगा। इस वक्त जो यूएसए और जो इंडिया है वो टॉप पे हैं 4 पॉइंट्स के साथ, और पाकिस्तान के पास 0 पॉइंट्स हैं। कल पाकिस्तान का मुकाबला हमारे कनाडा के साथ है,
2 पॉइंट वही रख लो।
अच्छा ठीक है
जी, 2 पॉइंट
ये जो, अच्छा जी, पुअर जो परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान टीम की, इसके ऊपर तो जनता पाकिस्तान में भड़क गई। वसीम अकरम साहब जो हैं उन्होंने बहुत इनको बैच किया टीम को, उन्होंने कहा पाकिस्तान को दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, ये खुद अपने लिए काफी हैं, और मैं इनके मुंह में पैसिफायर क्या डाल सकता हूं, इनको अपनी सिचुएशन का खुद से जजमेंट करना चाहिए, और बाबर को और जो कोच है उनको एक्सप्लेनेशन देने पड़ेंगे। हम क्या यहां पर बैठ के आपको प्रोग्राम्स पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, ये सारे के सारे बैट्समैन जो है पिछले 8 से 10 साल से खेल रहे हैं। मैं बताऊं जाके रिजवान को कि तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने एक मेन बॉलर इंडिया का आ रहा है, तो तुमको कैसे अपनी विकेट बचानी है और कैसे खेलना है। और मैं तो हैरान हूं कि 10 ओवर जो पहले के थे उसमें एक बाउंड्री भी इन लोगों ने हिट नहीं की थी, ये कैसे खेल रहे हैं और इनको कैसे बताया जाए। 120 का एक टारगेट जो था वो एक्सट्रीमली लो टारगेट था, उसको इन्होंने चेज करना था, जो ये नहीं कर सके। टीम इस वक्त इतने बुरे पॉइंट के ऊपर आ गई है कि उसको सपोर्ट करना इस वक्त एम्बैरसिंग हो गया। वो कहते हैं जी मैं पाकिस्तानी हूं और मैं हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूं, लेकिन इस वक्त मेरे लिए ये एम्बैरसमेंट है इनको सपोर्ट करना, बिकॉज देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। इसके अलावा हेड कोच गैरी क्रिस्टन जो है उन्होंने भी एडमिट किया कि ये हमारे हाथ में था गेम और हमने फेल किया टू कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटी, वी लेट इट स्लिप एट द एंड। वो कहते हैं जी कि 76 पे हम 2 थे विथ 6 to 7 ओवर्स लेफ्ट, और हमको बहुत अच्छे से खेलना चाहिए था, लेकिन हमने बहुत ही डिसअपॉइंटिंग तरीके से जो है लाइन को क्रॉस किया। सलमान बट ने कहा जी पाकिस्तान टीम जो है उसको हमेशा बहुत अच्छे तरीके आते हैं मैच को लूज करने के लिए। रिजवान को एक ही जॉब दी गई थी कि वो बैटिंग करता और वो उसको बैटिंग एंड तक करनी चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं की। इन्होंने अपना मैच खुद सारा रुइन किया है। इफ्तिकार साहब जो हैं वो जो है, मुझे हैरत है कि कैसे फुल टॉस बॉल आ रही है और उस पर वो आउट हो रहा है, उसको पता नहीं है एक सीनियर प्लेयर को कि कैसे खेलना है। फखर जमान जो है वो पूर शॉट मार रहा है, इमाद वसीम जो है वो पीछे को स्टेप बैक कर रहा है हिट मारने के लिए, शादाब जो है उसने भी एग्जैक्टली वही किया। इन लोगों को कौन बताएगा कि आपको कैसे खेलना चाहिए है। शायद अफरीदी भी इसमें बहुत गुस्से हुए, उन्होंने कहा जी ये कैप्टन का जॉब होता है कि वो फील्ड में लोगों को कैसे साथ लेके चले, और इस वक्त तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन वर्ल्ड कप के खत्म होने पे मैं आपको इनके फेल होने के रीजन बताऊंगा। और ये जो हैं कुछ लोग हैं इस वक्त क्रिकेट के अंदर जो कि इस यूनिट को बर्बाद करना चाह रहे हैं। इसके ऊपर जी हफीज भी बड़े गुस्से हुए, उन्होंने कहा जी इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को किसने कहा था टीम के अंदर लाने के लिए। हफीज ने कहा जी ये तो वो लोग हैं जिनको पीसीबी तरले करता था कि आप मैचेस हमारे साथ खेलो, और ये T20 जो लीग्स हैं बाहर के मुल्कों में खेलने के लिए चले जाते थे, लेकिन चूंकि जून की विंडो में कोई और बाहर की लीग नहीं थी तो इन्होंने बड़े कन्वीनियंटली कह दिया पीसीबी को कि हां हां हम नेशनल टीम के लिए खेलेंगे, तो इसलिए इन्होंने इसको भी सिर्फ दे जस्ट ट्रीटेड इट एज अनदर लीग, कोई उनके अंदर सीरियसनेस नहीं थी। इससे पहले रमीज राजा भी थे, वो कह रहे थे कि इनकी परफॉर्मेंस जो है, हम जब सोचते हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इससे घटिया नहीं हो सकती, एंड उसी वक्त ये अमेरिका जैसी टीम से हार जाते हैं, जो मैचेस इनकी जेब में होते हैं दे लेट इट स्लिप। ठीक है भाईजान, खुश हो?
नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये हाँ। जो है एक अमेरिका ने 2 गेम हारने
हाँ।
और पाकिस्तान ने 2 गेम जीतने और फिर आ गया,
फिर सुपर 8 में आ जाना है,
फिर सुपर 8 में आ जाना।
वाह वाह वाह,
क्यों परवाह करती हो? परवाह नहीं है, दिल छोटा नहीं करना है, परवाह नहीं करनी है।
ठीक है जी,
हम तो शुरू से हमेशा हर टूर्नामेंट में हम पहले देते हैं, उसके बाद फिर वो उससे हारे, वो उससे हारे,
और बारिश हो जाए और कुदरत का निजाम आ जाए,
बारिश ना हो एक एक पॉइंट मिल जाता उनको।
अच्छा अच्छा,
नहीं बारिश ना हो,
अच्छा
बारिश कतई तौर
कतई ना हो, बस कुदरत का निजाम आए,
कुदरत का निजाम।
अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छा जनाब, आज पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा है कि इसमें जो टीम है उसमें मेजर सर्जरी करने की जरूरत है। नहीं मोहसिन नकवी साहब, आपको जाने की जरूरत है पीसीबी से। सबसे बड़ी सर्जरी ये होगी कि आप जाएं। आप खुदा के लिए आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। क्रिकेट टीम को काकूल ले जा के आप ट्रेनिंग करा रहे हैं, जिन्होंने खुद कभी वॉर नहीं जीती, इनको क्या सिखाना था उन्होंने जंग जीतने के लिए। अच्छा जी, बाला जी वो कहते हैं कि ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग। अच्छा ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, आई लव यू। तो वो कहते हैं जी कि इंडिया के साथ जो इनकी परफॉर्मेंस थी इंतहाई डिसअपॉइंटिंग थी, और जो है इसमें से हमें सबक सीखना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि इस टीम की परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए। और मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान की टीम दुनिया की बेस्ट टीम बने, क्योंकि अभी वैसे भी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आने वाली है, तो हमको तो अब देखना पड़ेगा, बाहर से कहीं से टैलेंट लेके आना पड़ेगा। हाँ जी, अब सारे वेस्ट इंडियन खेलेंगे हमारी टीम लंबे लंबे जुअल गार्नर की तरह के। वो कहते हैं जी कि जो नेशन है वो बड़ी डिसअपॉइंटेड है। भाईजान हम आपसे भी डिसअपॉइंटेड है, खुदा के लिए पीसीबी का खेड़ा छोड़ो, आप खुदा के लिए आप जाओ। अच्छा जनाब, सिर्फ पाकिस्तान को बैशिंग नहीं मिली, इंडियन टीम को भी बेतहाशा बैशिंग मिली है। सुनील गावस्कर साहब बहुत ज्यादा नाराज थे इंडियन टीम की परफॉर्मेंस से। उन्होंने कहा कि दिस वॉज अ डिसअपॉइंटिंग बैटिंग परफॉर्मेंस, दे शोड द बॉयज शोड अ लॉट ऑफ एरोगेंस एंड रेकलेसनेस। There was arrogance from the very start of the innings. They were trying to hit every ball. Not every ball is for hitting. This was not an Ireland attack. This was not an ordinary bowling attack. This was the experienced Pakistan's bowling attack. And they should be respected. Ye jo Indian jo players hain, batters hain, unko Pakistan ke bowling attack ka respect karna padega. Unhone koi respect nahi show kiya. Aap disrespect Ireland ko. तो मैं शो नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन आपको पाकिस्तानी बॉलर्स का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। और मुझे हैरत है कि उन्होंने आपको आउट कर लिया अभी एक ओवर जो था टू स्पेयर, एंड दिस शोज कि ये टीम जो है इसका किस टाइप का थिंकिंग है। और आपको 6 रन और बनाने चाहिए थे, एटलीस्ट आपको 125 रन बनाने चाहिए थे टू मेक अ डिफरेंस। ये जिस तरह से आप जीते हैं, इट इज पथेटिक, बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे जी सुनील गावस्कर साहब। एंड जनाब, एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट साउथ अफ्रीका डिफीटिंग बांग्लादेश बाय 4 रन एट नसू काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन न्यूयॉर्क। तंजीम हसन और तस्किन अहमद जो बंगला के हैं, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था साउथ अफ्रीका को फॉर 113 फॉर 6 आफ्टर इलेक्टिंग टू बैट फर्स्ट। तौहीद हिदरॉय और महमूद अल्लाह ने जो है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की गेम खेली साउथ अफ्रीका जो थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भी अपना जो है वो होश और जोश दोनों ही खोने नहीं दिया। और जो वैसे है ये लोएस्ट जो था ये डिफेंडिंग टोटल था इस तरह की T20 की हिस्ट्री के अंदर। बांग्लादेश जो थे वो 50 फॉर 4 थे आफ्टर 10 ओवर्स, और उनको चाहिए थे 64 रन्स टू विन फ्रॉम 10 ओवर्स। इससे पहले मिलर जो थे उन्होंने साउथ अफ्रीका के, उन्होंने 29 और क्लासन ने 46 बनाए थे। 79 रन का पार्टनरशिप उन्होंने दिया था फॉर 6 विकेट, विच इज द हाइएस्ट ऑन एनी विकेट इन न्यूयॉर्क। और साउथ अफ्रीका जो है अब बड़ा इजिली सुपर 8 में पहुंच चुका है। ठीक है जी,
हम भी पहुंच रहे हैं,
परवाह ना करें आप, पहुंच रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल।
हमारी ट्रेन देर से आ रही है, मगर हम पहुंच गए जी उधर।
अच्छा अच्छा, बस हम दरवाजे पे खड़े हैं,
दरवाजे पे खड़े
हैं, ट्रेन के अंदर हमने बैठना है।
मैं आपको बता रहा हूँ आप क्यों हम के लिए परेशान होती है, काले कपड़े पहनती हैं आप फजूल में।
अच्छा,
काले कपड़े ना पहने, लाल कपड़े पहन के आए।
अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ
मगर लाल कपड़े कैनेडा के लिए नहीं पहने,
डराने के लिए लोगों को।
We'll be there, not to worry about it.
अच्छा,
ये थी आज की न्यूज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
थैंक यू माइज, लेकिन अभी हमारा शुरू होने वाला है क्रिकेट का सेगमेंट, जिसमें कि हमारे साथ क्रिकेट कनाडा के प्रेसिडेंट होंगे रिशपाल बाजवा जी। वो तो खुश होंगे, उनकी टीम तो जीती है।
बाजवा साहब आ रहे हैं?
यस, बाजवा साहब आ रहे हैं।
ओ बाजवा साहब आ रहे हैं, हम तो
आम लोगों को तो बुलाते ही नहीं है,
आम लोगों को बुलाते नहीं है। बाजवा साहब आ रहे हैं यहाँ पर, तो आप थोड़ा सा वेट करें, 7 बजे बाजवा साहब हमारे स्टूडियो में होंगे, और फिर आप भी पहुंच जाइएगा यहाँ पर। आमिर अहमद, जिशान अहमद एंड शाहजा जी पेश करेंगे क्रिकेट का स्पेशल T20 प्रोग्राम। बखे की बात इंशाल्लाह ताला कल, उस वक्त के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज,
खुदाई हाफिज।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो। 770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو باخبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشیل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر
6478724900
اپنی کمیونٹی دا سب تو بڑا ودیا کوالٹی والا تے سب تو پرانا سوڈی فرنیچر ہر گھر دی پہچان بن چکی ہے
او پھر بنے بھی کیوں نا کیونکہ بیڈ روم سیٹ سوفا سیٹ میٹریسز ڈائننگ ٹیبل ڈیکوریٹو آئٹمز گل کیجی سارے گھر دا فرنیچر ودیا کوالٹی تے ڈسکاؤنٹڈ پرائس تے مل جاندا سوڈی فرنیچر تو 3 سال لئی نو بیاج
142 کینیڈی روڈ برامٹن 9058747171
کیا آپ کے گھر اور آٹو انشورنس کی رینیول ہو رہی ہے کیا آپ درست انشورنس کوریج کے لیے اچھی قیمت کی تلاش میں ہیں تو پھر آپ کو آل اسٹے ایجنٹ ایجنسی کے راجہ مدثر کو 6472903773 پر کال کرنی چاہیے آج ہی کال کریں اور آپ دو کاروں اور ایک گھر کی انشورنس کراتے وقت تقریباً $1,775 کی بچت کر سکتے ہیں راجہ مدثر 6472903773